वी वेर ऑफ कराची फॉर 35 days, 35 to 40 days, एंड दे वेर नेवी के 33 ships थे. वी कॉल्ड इट एज ऑपरेशन तलवार. वी वेर यू नो वी कुड सी द कराची पोर्ट लाइट्स एंड वी वेर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स टू अटैक कराची, यू नो. सो
राइट
बट हाउएवर पाकिस्तान गॉट दी उसकी बोलती है ना, उनको पता चला कि ऐसे सब है एंड दे न्यू इट इज अ डिजास्टर फॉर देम. इफ इंडियन नेवी स्ट्राइक्स, दे आर गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ देयर मैप. अगेन अ फुल फ्लेज वॉर वॉज गोइंग टू हैपन विद पाकिस्तान. एंड दिस टाइम आई वॉज इन अ सीनियर रोल, 2 साल हो चुके थे, तो आई वॉज इन अ मिजाइल बेस, वही मार्कोस बेस.
सो हेलो सर, लेफ्टिनेंट कमांडर बिजय नायर सर, वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो। तो आज एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टिल नाउ आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, बट कभी मुझे ये मौका ही नहीं मिला कि मैं किसी नेवी ऑफिसर से बात करूं, और फॉर दैट मैटर मैंने आज तक कभी एयरफोर्स से भी किसी से बात नहीं किया। तो दिस इज द फर्स्ट, मतलब वो जोन है मेरे लिए वेर आई एम टॉकिंग विद समवन फ्रॉम द नेवी। सो वेलकम ऑन द शो सर फर्स्टली।
Yeah, thank you so much. I mean, you know, like it's a privilege to be on the Awara Musafir. And yes, as जैसे कि तुमने कहा कि नेवल ऑफिसर से बहुत कम मुलाकात हुई या मुलाकात नहीं हुई है, यू नो, प्रोबेबली द फर्स्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द आर्म फोर्सेज इटसेल्फ. इफ यू सी
राइट
द मैक्सिमम इज आर्मी, यू नो, नेवी, देन कम्स द एयर फोर्स एंड देन कम्स द नेवी. सो ऑब्वियसली, सो यू नो, वेरी फ्यू पीपल इन दैट सर्कल. And I'm sure there are many who are veterans, but they are either there on the social media or not there on the social media. So I'm into this, guiding the young people and other thing from 2020, rather from the
राइट
lockdown. So probably that's why you came across my profile, and that's
या
how you are interviewing a naval officer. So great, great. We'll have a good session.
सो एक्चुअली यू नो व्हाट, लाइक आई वाज रीडिंग समवेयर कि किसी भी कंट्री की, लाइक देयर इज द मिलिट्री, देयर इज एयरफोर्स, बट जो एक बैकबोन होता है इट इज द नेवी। नेवी डिसाइड्स कि ठीक है एंड पॉइंट पे हु हैज द मोर पावर, एक अपर हैंड किसके पास है, बिकॉज जनरली वॉटर्स आर द सोर्स जहां पे ये सब जियो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजीज होती है वो एंड पॉइंट पे आती है। एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन तलवार विच वॉज लाइक कारगिल के ड्यूरिंग दिस वॉज राइट।
Yeah, that's right. That's right.
Okay, and you were also a part of Operation Parakram. So we'll talk about these things, but I want to start your journey because I mean, like around last 6-7 months से follow करता हूँ। तो I have seen कि firstly you started from as a navy officer. तो पहले childhood से you went on to become a naval officer, and then after that when you retired you went on to become a content creator as well. You have written 2 books. तो ये journey कहाँ से start होती है, and then how does this take a different route content creation का?
ओके, सो दी जर्नी जो है ना, जर्नी इज वेरी ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल वाई आई से ब्यूटिफुल इज, यू नो, आई एम अ सोर्स, यू नो. ये नहीं कि मैं
राइट
कोई ग्रेट बंदा हूँ या यू नो, सो आई एम अ जस्ट अ मीडियम. सो मेरे जैसे काफ़ी सारे स्टोरीज होंगे, ओनली ये है कि आप जैसे लोग मुझे बुलाते हो, जानते हो. सो आई एम अ मीडियम, यू नो, इट्स नॉट दैट. सो मेरी जैसी कहानी बहुत लोगों की होगी. सो मैं फॉर्चुनेट
राइट
हूँ कि ऐसे मीडियम पर आकर बता सकता हूँ मेरी कहानी. सो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. आई एम अ केरलाइट बाई यू नो बाई सर नेम एंड बाई दिस थिंग. मेरी जो फितरत, या बोलते हैं ना कि भारतीय होने से, भारत में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न स्टेट्स है बहुत सारे.
राइट
सो आई एम फ्रॉम केरला, बट एज आई से बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. सो इट्स आई ऑलवेज से आई एम लाइक मराठी मलयाली, यू नो, सो दैट
करेक्ट
सॉर्ट ऑफ थिंग. सो माई बिगिनिंग वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड भांडुप, विच इज़ अ मुंबई सबअर्ब. इट्स इन द ईस्टर्न सबअर्ब रैदर, यू नो. मुंबई एज सच, इट्स अ
या
डिवाइडेड लेंथ वाइज, वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न. सो आई एम फ्रॉम द सेंट्रल सबअर्ब, यू नो, जस्ट टू
राइट
करेक्ट दैट. एंड सो भांडुप, सो आई वॉज बॉर्न इन 1976, एंड दोज वेर दी टाइम ऑफ यू नो close to when globalization were about to happen, things market were not that open, you know. so
करेक्ट
so my childhood was tough, tough in the sense my dad, you know, he was an electrician, he was working as an electrician. and then अभी के जमाने में कैसे, you have options, lot of career options. those days you know इतने नहीं थे. so what people used to do, जो भी नौकरी मिल गई, they used to just stick on to it. You know, कंपनी नहीं
करेक्ट
चेंज करते. दैट्स व्हाई यू विल सी पीपल ज्वाइन अ कंपनी एंड रिटायर आफ्टर 40 इयर्स एंड ऑल, विच इज नॉट नाउ. अभी तो कैसे चाचा, तीन तीन साल मैक्सिमम, यू नो, देन इट इज मोर ऑफ अ एम्प्लॉई फ्रेंडली टाइम नाउ. पहले इट वॉज मोर ऑफ अ एम्प्लॉयर फ्रेंडली टाइम. सो माई फादर वॉज फ्रॉम दैट टाइम. एंड येस, द बिगेस्ट ड्रॉबैक विच ही हैड, यू नो, वेन आई स्पीक टू हिम एंड टूडे ऑल्सो वेन ही लुक्स बैक, ही 75 ईयर्स ओल्ड. सो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक वॉज एजुकेशन, यू नो. ये नहीं कि पैसे नहीं था इसलिए पढ़े नहीं, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, ही वॉज फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, बट होता है ना कि बींग इन केरला, बींग फ्रॉम द रिच फैमिली, अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तभी,
इम्पोर्टेंस नहीं था एजुकेशन का जितना आज
उनके
है.
यंग डेज में, यू नो. एंड देन ही एक ऐसा पॉइंट आया उनके लाइफ में, ही वॉन्टेड टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, ही डिडंट वॉन्ट टू बी अंडर द, बोलते हैं ना, अपने माता पिता के उसमें नहीं होना था, यू नो, कि मैं ये बिजनेस फैमिली, ही जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग इंडिपेंडेंट. एंड देन ही रैन अवे फ्रॉम होम एंड ही केम टू मुंबई. जब मुंबई आया तो पता चला यार एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता है, यू नो, अदरवाइज यू विल गेट सम ऑड जॉब्स. He's like fifth pass and you can imagine how it, that's how he became, he started his career as a driver, as a cab driver. He was driving his owner and, you know, irrespective, he being from such a big family, you know. But जो खुददारी थी कि नहीं खुद से कुछ करना है, that's why I really appreciate him. Even today when we go back to our ancestral home in Kerala, they are all well off, you know. Touchwood, we are all well off now. बट वही है कि खुददारी से, सो ही बिकेम एन इलेक्ट्रीशियन. ड्राइवर थे पहले, फिर जब रियलाइज किया कि ड्राइविंग से कुछ नहीं होगा लाइफ में, सो यू हैव टू डू समथिंग. तो इवनिंग में, इवनिंग कॉलेज टाइप्स होता था तो वहाँ जाके आईटीआई की उसने इलेक्ट्रिकल की. एंड दैट्स हाउ ही गॉट एज अ टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इन द कंपनी जहाँ वो ड्राइव करते थे, वही ओनर के कंपनी में ही बिकेम इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन. दैट्स हाउ द हम्बल बिगनिंग ही हैड. एंड he bought a house in Bhandup and it was a very small house, you know. I stayed in a chawl, very small. And I'm sure all those who don't know chawl, chawl is a, again, a beautiful abode, beautiful place to live, but bahut chota hota hai, you know, 100 square feet. If lot of people who will be listening to me, jaise flats mein aapka ek bedroom ya ek kitchen hota, utna hamara ghar tha, you know. That was my house. And five of us, me, my parents and my two siblings. So, kabhi, yes, takleef hui bahut sari, but every time it was, aise takleef nahi hua ki, you know, khana nahi mil raha hai, aisa wo state kabhi nahi aaya life mein. Thanks to my parents, so they ensured that whatever we wanted, we got. But sab kuch content tha, content living bolte na jisko.
Right.
Isse zyada nahi sochne ka types, you know. But I was a dreamer always. I wanted, you know, the only thing I wanted, one of my biggest ambition was to move from, bolte na, ek strata of life se dusre strata mein, you have to continually improve, you know. If you don't continually improve, then there is no life, you know.
Right.
So, puri life ka jo maksad hai, pura jo, bolte na, elixir hai, wo hai continual improvement. So, yes, I was a dreamer. और ये नहीं पता मुझे, पहला ये था कि चौल से, चौल में कैसे होता है ना कि यू नो यू हैव अ कॉमन टॉयलेट, कॉमन बाथरूम, ऐसे बाथरूम तो खैर होती थी बट टॉयलेट एंड ऑल बिकम्स वेरी कॉमन,
राइट.
तो पहला एम्बिशन था यार कभी ऐसा स्टेज आना चाहिए लाइफ में ना कि खुद का कुछ हो करके. फर्स्ट थिंग इज कि आई वॉन्टेड, यू नो, जब भी वॉट एवर स्टेट आई रीच, आई वॉन्टेड समथिंग लाइक, यू नो, एवरीथिंग घर के अंदर होना चाहिए, यू नो. दैट वॉज द फर्स्ट सिंपल ड्रीम, होता है ना, एक छोटा सा एम्बिशन. एंड दैट वॉज द बिगनिंग, यू नो, दैट वॉज द बिगनिंग. फौज दूर दूर तक नहीं था मेरे इसमें पहले, टिल आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, तब तक फौज वॉज नॉट एट ऑल एनीवेयर. आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड टू बी अ गैंगस्टर, आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड टू बी अ ट्रेन मोटरमैन, ये सब मुझे. डॉक्टर एक्टर बनना वॉज, इंजीनियर बनना तो कहीं पे भी नहीं लिखा था, डॉक्टर वॉज स्टिल देयर इन माई माइंड. सो क्योंकि यू नो मुंबई ऑफ 76, 80s, 80s और 90s वॉज हेविली डोमिनेटेड बाई दिस गैंगस्टर्स एंड यू नो मूवीज मोटिवेटेड बाई दैट. एंड आई लिव्ड इन अ प्लेस वेर ऑल दैट वॉज वेरी प्रीडोमिनेंट. भांडुप वॉज एपी सेंटर ऑफ all the gangster activity, you know. In fact, one of my chacha was a don, So he was a great influence, and he was an engineer, you know, by the way. So very few people, very few podcasts know this. He was an engineer, and then glamour world stuck him, and then he became a gangster, and unfortunately he died at a very young age in a
Oh, sir.
cross war, gang war
Right.
shootout, you know. So he was a great influence being an engineer, because I remember मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज की जब ये चल रहा था, लाइक वो एडमिशंस के राउंड चलते हैं 97 में, 94 में, 93 94 में, दैट टाइम ही वाज विथ मी इन
ओके
माय एंटायर एडमिशन प्रोसेस, एंड ही वाज देयर बिकॉज ही वाज एन इंजीनियर, ही वाज हैविंग आइडिया, एंड देन 97 ही गॉट शॉर्ट आउट, यू नो. सो या दैट वाज अ हैवी इन्फ्लुएंस की व्हाई टू बी अ गैंगस्टर. एंड फिर व्हाट हैपेंड वाज, हम लोग सिंस यू नो मुलुंड एंड भांडुप एंड दैट एरिया, आई जहाँ मैं रहता था भांडुप में, दैट वॉज वेरी क्लोज टू कांजूरमार्ग, यू नो,
राइट
कांजूरमार्ग और भांडुप के बॉर्डर पे था. एंड एक नेवल कॉलोनी है वहाँ पर, NCHS वही बोल के. सो इट्स अ ह्यूज कॉलोनी फॉर नेवल सिविलियंस, यू नो.
राइट
एंड द बिगेस्ट अट्रैक्शन वॉज उसके अंदर एक प्ले ग्राउंड होता था, ह्यूज प्ले ग्राउंड, प्रोबेबली वन ऑफ दी 10 बिगेस्ट वाले बॉम्बे में से आएंगे वो. ह्यूज, रियली ह्यूज. एंड हम लोग जो बाहर सिविलियन बच्चे थे, हम लोग को खेलने के लिए कुछ नहीं था, अदर देन दी गली क्रिकेट, एंड यू नो. सो दिस वॉज दी ओनली प्लेस वेर यू कुड गो, दैट टू नॉट विद परमिशन, विदाउट परमिशन, ट्रेसपास करना पड़ता था. एंड सिविलियन एरिया होने से कैसे ना, कि इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं था, टू बी वेरी फ्रेंक. वी कुड बार्ज इन, वी कुड गो इन, वी कुड प्ले ऑन देयर ग्राउंड. एंड ऐसे करते करते वंस वी वे कॉट, ऑल ऑफ अस वे कॉट, यू नो, वहाँ के अंदर के जो सुपरवाइजर्स ने पकड़ लिए, एक दो बार ऐसे पकड़ के छोड़ दिए. सो जब छोड़ा जाता है विदाउट एनीथिंग, सो यू ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस, यू नो, कि कुछ नहीं होगा टाइम. सो सिलसिला चलता रहा. एंड वन डे बैड लक, या गुड लक बोलो, प्रोबेबली इट वॉज अ बैड लक, बट इट टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन माई करियर. वी वेर कॉट बाई दिस नेवल ऑफिसर्स, नेवी पीपल हु वेयर देयर यूनिफॉर्म एंड अदर थिंग, राइट. ये लोग एकदम ऐसे जिप्सी से उतरे और सबको पकड़ के लाए. सो एवरी वन मैनेज टू रन अवे, थ्री ऑफ अस गॉट कॉट. आई वॉज कॉट बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू रन अवे, बिकॉज आई नेवर सॉ अ नेवल यूनिफॉर्म वेरी क्लोजली लाइफ में. दैट वॉज द टाइम, फर्स्ट टाइम आई सॉ दी वाइट, दी वाइट बेल्ट, दी वाइट शू, दी वाइट पी कैप, दी एप्यूलेट, दी गोल्डन एप्यूलेट. इट वॉज फैसिनेटिंग, यू नो, इट फैसिनेटेड मी. एंड देन आई बिलीव दैट जो भी इसको पहनता है, दे लुक सो हैंडसम एंड दे लुक सो रॉयल, यू नो. एंड तब से वो ये हो गया कि ना नेवी में जाना है. अब नेवी में क्या बन के जाना है, दैट वॉज नॉट क्लियर, बिकॉज कोई गाइड करने नहीं था कि ऑफिसर क्या है, सेलर क्या है, या सिविलियन क्या है, कोई नो आइडिया, बस नेवी में जाना है. सो अदर टू ऑफ माई फ्रेंड्स, दे वेर ऑल्सो पनिश्ड, सो ऑल ऑफ अस गॉट पनिश्ड, रगड़ा मिला, एंड यू नो, उठक बैठक एंड ऑल दोस थिंग, एंड वी वेर लेट ऑफ, वी वेर लेट ऑफ. सो दैट इम्प्रेशन रिमेन्ड इन माई माइंड थ्रू आउट, ऑफ अ नेवल यूनिफॉर्म एंड अ नेवल पर्सनल. एंड सब्सिक्वेंटली फिर नाउ वो जागी ना टू फाइंड आउट कि हाउ टू ज्वाइन द नेवी. तो पहले नेवल कॉलोनी में पूछा, दो चार जिसको हम जानते थे, दे डिडेंट हैव आइडिया बिकॉज दे वर नेवल सिविलियंस, यू नो.
करेक्ट
मेरे स्कूल में एक बंदे का मामा यूज टू वॉज इन नेवी, ऐसे पता चला, और वो छुट्टी पे आने वाले थे, पनवेल में रहते थे. तो इसने बोला कि मेरा मामा वहां रहता है, ही वॉज फ्रॉम भांडुप. एंड देन हम लोग तीन लोग स्कूल बंक करके उनसे मिलने गए, थ्री ऑफ अस वेर वेरी क्यूरियस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस, थ्री ऑफ अस बंक द स्कूल. एंड दोज डेज बंकिंग स्कूल वॉज नॉट अलाउड, बिकॉज यू नो बंकिंग वॉज समथिंग क्रिमिनल. अभी के
करेक्ट
टाइम में इट्स डिफरेंट, अभी इफ यू
नाउ इट
डोंट बंक
इज
स्कूल,
लाइक कूल
हाँ
समझते हैं.
या तो वही मैं बोलता हूँ, मेरे टॉक्स में ही बोलता हूँ कि अभी अगर आपने बंक नहीं किया तो बोलेगा कि अरे क्या कूल नहीं है करके,
हाँ
यू नो. सो दोज डेज इज वर डिफरेंट. सो वी हिड अवर बैग, हमने बैग वगैरह कहीं छुपाए, एंड देन वी वेंट एंड मेट हिम पनवेल. तभी भांडुप से पनवेल 2 घंटे लगता था, बस चेंज करना पड़ता, दो तीन. अभी तो कैसे 1-45 मिनट्स में पहुंच जाता है
या
टू ट्रेन एंड ऑल. सो वेन वी मेट हिम, जब उनसे मिले, तो पहले तो बहुत गाली दी बिकॉज स्कूल यूनिफॉर्म में गए थे, टाई वगैरह छुपा दिए थे. बट ही सॉ दैट क्यूरियसनेस इन ऑल ऑफ अस कि ज्वाइन करना है. सो वी स्टार्टेड आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, एंड देन ही एक्सप्लेन्ड अस. दैट वॉज द टाइम आई केम टू नो अबाउट NDA, INA, NDA. यहाँ भी जा सकते हो आप, 12th के बाद एग्जाम देना होता है, इफ यू मिस इट देन यू हैव टू डू इंजीनियरिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. ये चला। तो जब वापस आ रहे थे हम तीन में से दो लोग ड्रॉप आउट हो गए, बोला कि नहीं होगा ये लाइव इतना टफ है सुन के, वी डोंट वांट यू नो, एंड ओनली आई वाज स्टिल मोटिवेटेड फॉर
करेक्ट
व्हाट एवर रीजन यू नो। सो एज समवन से कि व्हाट इंस्पायर्ड मी टू ज्वाइन द नेवी, बिगेस्ट इंस्पिरेशन यू नो आई वोंट ब्लफ हियर, माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज यूनिफॉर्म। There was no single person per se who inspired me, but the biggest inspiration was the whites itself. And to me, it was like nothing ki Navy mein jaake ye karunga. It was that you know, quest of wearing that uniform ki main pehnunga types.
Correct.
That's how my first tryst with Navy. Then I came back. Then I started. You know, he had mentioned ki. पाथफाइंडर की किताब आती है थाने में, कोई आइडियल बुक स्टोर थाने में, आइडियल बुक स्टोर है और एक दादर में भी है, वहां से हमने खरीदी पाथफाइंडर एंड देन स्टार्टेड स्टडीइंग इट, रीडिंग इट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, बिकॉज 11th में एग्जाम्स होता है 11th एंड और 12th के आसपास। तो सो आई गेव माई एनडीए एग्जाम्स। सी स्कूल, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्कूल जहाँ पे इट वॉज मैनेज बाय मलयाली ट्रस्ट एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बट लोग बोलते नहीं इंग्लिश वगैरह ना, बहुत कम, लाइक टिपिकल मुंबईया स्कूल, वेरी स्मॉल स्कूल। सो इफ यू सी टिपिकली द मिलिट्री पीपल, जो मिलिट्री ऑफिसर्स इफ यू सी इंटरव्यू करोगे, तो दे आर आइदर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट, मिलिट्री स्कूल, रिमकोलियन एंड सो मेनी थिंग, बट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्कूल यू नो, वेरी नॉट सो फेमस ऑल्सो। वहाँ सपोर्ट वगैरह के लिए टीचर्स थे, दे यूज टू मोटिवेट, बट नोबडी हैड आइडिया अबाउट दी आर्म फोर्सेस। उनको क्या था, टिपिकल इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये तीन चार प्रोफेशंस थे। एंड फिर मैंने एनडीए की एग्जाम दी, एनडीए का एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स यू नो। आईआईटी एंड ऑल इज इन डिफरेंट लीग, बट एनडीए एग्जाम्स आर टफेस्ट इन द सेंस, रिटर्न एग्जाम आप क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद 5 डेज का एसएस भी, उसके बाद 5 डेज का मेडिकल, उसके बाद यू नो देन कम्स द मेरिट लिस्ट। सो आई क्लियर एनडीए का एग्जाम जब हुआ, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि आई पढ़ाई वढ़ाई की थी। सी कभी कॉन्फिडेंस की कमी होने नहीं दी लाइफ में, बिकॉज एसएसबी में जब गए, सो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज बिट शेकन, बिकॉज हमारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे वहाँ के लिए, नो वन पैंट एंड टू शर्ट्स ऐसे करके गए थे, दैट टू यू हैव टू एंश्योर दैट 4 दिन टिके ये करके खराब ना हो एंड ऑल। बट वहाँ पे जब मैंने देखा पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कम्स एंड दे वर स्पीक स्पैन, देयर इंग्लिश वॉज सो हाई फाई, एकदम बन ठन के टाई भी पहने हैं यू नो, एक बैच में एक सरदार भी था, ही वॉज लुकिंग सो स्मार्ट, डैम हैंडसम, ही वॉज फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड। तो इन सबको देख कर उनके जूते एकदम हाई फाई पॉलिश, अपने तो जो स्कूल वाला जो ब्लैक शू होता है वही पहन के ज्यादा पॉलिश मार के लेके गए थे उसको यू नो, ओपी शूज जो होता है ना वो सारा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज बिट शेकन कि यार ऐसे अगर होता है तो नहीं होगा करके, बट कहीं ना कहीं फिर भी ये था कि नहीं, आई विल डू माय बेस्ट, आई विल यू नो, एसएसबी इज ऑल अबाउट ओपनिंग अप योर पर्सनैलिटी, तो उसमें तो कोई कमी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज गुड एट वेरियस थिंग्स इन स्कूल, स्कूल डे, स्पोर्ट्स, स्टडीज, आई वॉज above average and you know cultural and वो सारे चीज में थे। तो वो भरोसे से SSB exam दी, 5 days की SSB interview दी, various test in that SSB interview, the first day screening followed by you know various tests like TAT, VAT, GED या lecturate या personal interview या GTO task, ये सारे कर करके एंड फाइनली द डे वेन द रिजल्ट वॉज अनाउंस, वो चेस्ट नंबर अनाउंस करते, तो पहला 3 नंबर अनाउंस किया, मेरा नाम नहीं था उसमें। एंड देन जैसे जैसे अनाउंस होता है नाम नहीं होगा तो योर चांसेस बिकम लेस, बिकॉज 4-5 से ज्यादा सेलेक्ट नहीं होते। एंड एज ऑल ऑफ अस वेयर लुकिंग एट ईच अदर की हु नेक्स्ट, तो 4th नंबर जब बुलाया तो मेरा नाम नंबर था। सो दैट वॉज अ वेरी यूफोरिक मोमेंट इन द सेंस कि आपने जो सपना देखा था चौल में रहकर कि एनडीए में जाना है, प्रेस्टिजियस एनडीए में, so I was one step closer to getting into NDA. All right. फिर होता है medical. तो medical का तो I was very confident. I was fit. कोई issue नहीं था कहीं पे भी. You know everything was perfect. But that is what we feel. We feel that everything is perfect. You know externally सब सही लग रहा था. इंटरनली एक्सरे एक्सरे सब ठीक ही था,
राइट
बट आईज को कभी मैंने चश्मा पहनी नहीं, आज भी नहीं, आज तो सिर्फ आजकल तो सिर्फ लैपटॉप के लिए पहनता हूँ। जब आई टेस्ट का रिजल्ट आया तो माय यू नो थिंग वाज माय आई साइट वाज नॉट 6x6। इट वाज अ शॉक फॉर मी बिकॉज मुझे समझा ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल द मेडिकल लैंग्वेज जार्गन, एंड मैं उनसे पूछता ही रहा। मैं बोला यार सब कुछ तो ठीक दिख रहा है, सिर्फ एक दो लेटर ठीक नहीं दिख रहे थे। देन दे सेड कि आपका करेक्शन 6x6 नहीं हो रहा है, वी कांट हेल्प इट, यू आर रिजेक्टेड करके, यू नो मेडिकली TR टेम्पररी रिजेक्टेड। अब TR का प्रॉब्लम क्या है ना, यू हैव टू गो टू दिल्ली MH में फिर से करेक्ट करने के लिए टू गेट इट रीअपील्ड। सो आई केम होम, आई वॉज सो मेरे जो बाकी के वहाँ जो दोस्त सेलेक्ट हुए थे वो बोला कि कोई नहीं दिल्ली में अपील वेर वेरी हाई, बट वेन आई केम होम पेरेंट्स फादर को बताया तो फादर वॉज सेइंग फादर टोल्ड की यू नो अगेन गोइंग टू दिल्ली स्पेंडिंग 4,000-5,000 rupees, आई डोंट हैव दैट मनी, यू नो अभी। एंड उनकी भी बात सही थी, बेचारे पैसे नहीं थे तभी उतना, दोस टाइम्स मनी वॉज प्रीमियम। देन ही आस्क्ड मी कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आई सेड कि अगर वो लोग भी रिजेक्ट कर दिए तो नहीं होगा सेलेक्ट, तो ही सेड कि ओके सो देन फॉरगेट डोंट गो दिल्ली थिंक दैट यू हैव नॉट गॉट सेलेक्टेड, यू नो सो आई वाज सो क्लोज। हो सकता है कि शायद तभी अगर अपील करता तो हो भी जाता, बट लाइफ हैड समथिंग डिफरेंट प्लान। एंड देन यस वहां पे वो सपना टूट गया टू ज्वाइन द NDA। सो आई स्टिल रिग्रेट समडे कि NDA एंट्री नहीं हूँ या थ्रू, बट या बट लेटर इट गॉट कंपनसेटेड इन अदर वे। फिर आई केम बैक होम, आई वॉज इन टू वेरी शॉक एंड डिप्रेशन बिकॉज यू नो बोलते ना मुंह से निवाला छीन लेना, इट वॉज दैट क्लोज यू नो। एंड देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई करियर अगेन, आई हैड डिसेंट मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड, सो आई वेंट ऑन टू डू माई इंजीनियरिंग। I wanted to be away from home for various reasons, you know, बार बार लोग पूछेंगे वही क्यों रिजेक्ट हुआ, लोगों को बोलते हैं ना कि लोगों को आप चुप नहीं करा सकते हो, so that fear of being always judged, to kept me away and I wanted to be in hostel. Now being in hostel means money, you know, you don't, so we didn't have free seat, तभी engineering की 4,000 rupees थी. And, you know, father was keen on me doing BSc because very fact was उसके लिए पैसे कम थे, 1,000 rupees थे और इंजीनियरिंग के लिए 4,000 rupees थे, तो he said कि do BSc और मैं तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी पे लगवाऊंगा and all, everything done, fixed. And I said no, since I am so close and मेरे खानदान में कोई इंजीनियर नहीं था BTech, तो बोला कि I want to do BTech. So now the question was पैसा कहाँ से आएगा, and that is how the one of the trust pitched in, जो surprisingly it was a trust run by a Muslim organization, you know. So I appealed through one of my friends and they saw my academics Sara and they was ready to sponsor my school fees and hostel fees, college fees and hostel fees. So I'm a sponsored candidate, you know. So I always take proud saying that particular fact, and it was that's how the life is full of gratitude. और भूलना नहीं चाहिए, कभी भी लाइफ में भूलना नहीं। एंड टुडे ऐसा सीन है कि आई गो बैक एंड स्पॉन्सर देम फॉर 3-4 कैडेट्स, सो दैट इज हाउ द सर्कल इज, यू नो दैट इज हाउ द सर्कल इज, समवन डिजायरिंग व्हाई नॉट, यू नो आई टुडे आई एम इन दैट पोजीशन टू पे अ फीस, सो आई डू दैट बिकॉज सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज ऑन द अदर हैंड, एंड ये सर्कल चलता रहता है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स होम दे हैव स्पॉन्सर्ड, दे कम बैक एंड स्पॉन्सर्स अदर, यू नो एंड दैट्स द ब्यूटीफुल सर्कल। फिर हॉस्टल में रहा तो इंजीनियरिंग में यू नो बीइंग अ टीनेजर एंड एवरीबडी सेड कि बिगड़ जाओगे हॉस्टल में जाके, ये होगा वो होगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ, बिगड़ना था, गए हॉस्टल, न्यू लाइफ, सडन इंडिपेंडेंस, फ्रेंड्स, हॉस्टल मेट्स, ऑल ऑफ देम वर गुड एट स्टडीज बट एवरीवन वांटेड टू एक्सप्लोर लाइफ, सो फिर वो चालू हुई सिगरेट एंड ओकेजनली
सम इज दैट फेज, वो एक मतलब टीनेज से जस्ट बाहर जाने का,
जस्ट बाहर
राइट,
बोला कि बूज करना है, बियर पीना है, बियर कैसे लगता है, यू नो आज के डेट में एंड ऑल स्टिल यू नो इट इज फॉर ओकेजनल यू हैव, तभी तो ऐसे कैसे था कि इट वाज एक्साइटमेंट, सो एवरीथिंग डन एंड देन दैट स्टार्टेड शोइंग इन द एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में पहला सेमेस्टर में आई लॉस्ट 4 papers, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड अ फेलियर, यू नो उसके पहले लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ था एक भी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग में आते भी एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट नहीं, स्ट्रेट अवे चार सब्जेक्ट गए पहले. एंड दैट वे इंजीनियरिंग इज ब्यूटिफुल बिकॉज दे अलाउ यू टू कीप टर्म. एवरी वन इज हैप्पी, यू नो, वहाँ पे चार में फेल हो, पांच में फेल हो या सब में क्लियर हो, किसको फर्स्ट क्लास आए, एवरी वन इज स्माइलिंग एंड हैप्पी बिकॉज उनको पता नहीं होता चल क्या रहा है लाइफ में. That was the shocker, you know, 12 के बाद suddenly आया syllabus.
सब एक साथ figure out कर रहे हैं.
Exactly. तो फिर first semester बिगड़ गया, then subsequently it went on to second semester equally bad, four more down. तो you know, so you had total 16 paper in first year, 8 down, उसमें 8 pass, 8 down, and you have to carry this 8 to the next
year. Semester. Okay.
So that means your fifth semester has got six subject. Sorry, third semester got six subject, and you have eight from the past.
Right.
14 subject. So ये सिलसिला बंद नहीं हुआ. फिर third में जाके दो subject में लग गया, and then you are carrying 8 + 2 again 10. When you go to 4, there are 6 papers, 16 paper. So वो झुमले में रह गया, and all your percentages got totally fucked up. मतलब ना सब जगह पे. फिर क्या हुआ? So life changed now. Now comes the life change part. जब हम थर्ड ईयर में थे तब एक नोटिफिकेशन आई फ्रॉम दी हमारे कॉलेज में लगाया था कि इफ यू वांट टू जॉइन द इंडियन नेवी थ्रू इंजीनियरिंग एंट्री दिस आर द क्राइटेरिया एंड वन ऑफ द क्राइटेरिया वाज दैट यू नीड टू हैव फर्स्ट क्लास इन द लास्ट फोर सेमेस्टर.
ओके,
लास्ट फोर सेमेस्टर. तो अभी मेरा पहला चार सेमेस्टर ही हुआ था, पूरा बिगड़ा हुआ था, एकदम हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था इनफैक्ट. सो देन आई सेड ओके फाइन, आई हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी. Only challenge is that you have to get first class. Pass bhi nahi, first class pooch rahe. That was challenging, you know. But wahi hota hai na ki once you have a goal, once you make up your mind, then bolte hai na everything falls in order.
Right.
I gave my everything. I started isolating myself from the group activities of college and the night activities of college. I started focusing on studies, both engineering as well as jo Navy ki jo थोड़ा बहुत प्रिपरेशन चाहिए. सो माय फ्रेंड्स दे इनिशियली दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम डूइंग दैट, बट देन आई टोल्ड कि माय एम इज दिस, यू नो, आई वांट टू अपीयर फॉर दिस, देन दे विल सपोर्ट यू नोट्स वगैरह ये ओके. सो बैकलॉग्स आर क्लियर हुए एंड व्हेन द 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो आई गॉट फर्स्ट क्लास 61%. दैट वाज अ ब्रीथर इन मेनी वे. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर सरप्राइज कि ये लोग तो कभी पास नहीं होते थे, सडनली अ फर्स्ट क्लास ईयर. A lot of people said, "Sali, copy mare honge types," you know. So then sixth semester happened. It was 64%, and then seventh semester it was 68%, and eighth semester it was 72%. So overall, aggregate, I topped the college. I was in the first three of that branch, and it was a surprise because someone who had failed till first four semester, and for the next four semester, you you know, give up your everything and put in your best, and then you determine and achieve something which is impossible, you know.
Yeah.
So my only ambition was ki I become eligible for writing short service commission, Navy ka. That happened. I went to SSB again in my eighth semester ka exam hona tha, tabhi uske pehle interviews aa gaye, so I went to Bangalore for my SSB again. And as expected, SSB ek bar clear hua tha, to phir second time, generally bolte hain ek bar clear hote to अब सेकेंड टाइम भी हो ही जाता है बिकॉज योर पर्सनैलिटी नेवर चेंजेस, यू नो. सो आई गॉट क्लियर्ड एंड जब फाइनल डे पे जब नाम बुलाया, बिप नंबर बुलाया, तो माय बिप वाज कॉल्ड फर्स्ट, यू नो, नंबर व्हाटएवर 36 या जो भी था. सो आई वाज प्रीटी हैप्पी अगेन. सो माय फियर वाज मेडिकल अगेन बिकॉज नेक्स्ट 5 days मेडिकल होने वाली थी. फिर मेडिकल हुई, 4 days एवरीथिंग वेंट स्ट्रांग, एंड ऑन दी 5th day, I got totally fucked up because same aankhon ka issue aaya. But as I said, it was very negligible, you know. 12th ke baad NDA mein bahut strict hote hain wo log. Thoda bhi ho jata hai, reject kar hai. Yahan I got reasoning time with the medical officer. So I told everything is fine. Then it was in his hand, to be very frank. Karna hai, nahi karna hai. So he checked all other reports and he gave me a chance. He said, okay, fine. So I'm clearing you karke, you know.
Okay.
And that's how the medical cleared. And I was All India rank 4 in the merit. So that was not a issue. So yes, that dream of, you know, a dream, a very small dream, which I thought बींग इन अ चौल मुंबई में छोटे से जगह से, नहीं तो नोशन होता है ना कि फौज में सिर्फ फौजी बैकग्राउंड वाले जाते हैं,
राइट.
पीपल फ्रॉम एफ्लुएंट
सो
बैकग्राउंड
आपके
गोज.
फैमिली से बैकग्राउंड किसी का नहीं था फौज में?
नहीं, मेरे एक दूर के मामा, मेरे मामा सेलर थे नेवी में, बट
ओके.
उनसे ज्यादा मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था. सो आई वॉज अवेयर ही इज देयर, दैट वॉज द ओनली कनेक्शन, अदरवाइज कहीं पे नहीं था ये. एंड फिर वो नोशन ब्रेक हुआ कि देन आई रियलाइज फौज इज इक्वल फॉर एवरीबडी, दोज हु हैव दैट पोटेंशियल इन देम विल मेक इट, यू नो, डजंट नीड अ बैकअप और रिकमेंडेशन सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड रिकमेंडेशन होगा तो भी कोई फर्क लेते नहीं है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. सो यस, एंड दैट वॉज माई फेज वन ऑफ लाइफ टिल द अकेडमी. फिर वेरी सून आई गॉट द ज्वाइनिंग ऑर्डर्स टू द अकेडमी, सो आई वेंट टू गोवा. सो नेवल अकेडमी वॉज इन गोवा इनिशियली, नाउ इट इज इन एमला. सो दैट टाइम इट वॉज इन गोवा, सो आई रिपोर्टेड टू द नेवल अकेडमी. एंड यस, लाइफ चेंज देयर आफ्टर, यू नो वॉट आई वेंट इन एज अ 21 years ओल्ड इन साइड, एंड वेन आई केम आउट एज 22 years ओल्ड, सो देर वॉज अज चेंज, ह्यूज चेंज, यू
करेक्ट.
नो, इन द पर्सनैलिटी, इन द वे यू केप्ट यूर सेल्फ, द वे यू बिहेव, द वे यू कंडक्टेड, द यूर टॉक, यूर एटीट्यूड, योर एप्टीट्यूड, द वे यू लुक एट द सोसाइटी, एवरीथिंग चेंज. 1 year मेड द होल डिफरेंस इन वॉट एवर. थ्रू इट वॉज नॉट ईजी, वेरी वेरी टफ, लॉट्स ऑफ पनिशमेंट्स, लॉट्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर एवरी डैम थिंग, यू नो. देन यू यूज टू
रगड़ा.
वंडर कि साला पनिशमेंट हो क्यों रहा है करके, यू नो. एंड देन देर इज नो रीजन, एब्सोल्यूटली नो रीजन वाई यू आर गेटिंग सम पनिशमेंट. सो बहुत रगड़ा खाए, एंड दैट्स हाउ यू लर्न, यू नो, यू लर्न. एंड देन सडनली वहां कैसे सी, वी आर ग्रेजुएट इंजीनियर्स हु वेंट डायरेक्ट एंट्री, एंड देर आर INA में जो 12th के बाद बच्चे आते हैं हु आर डूइंग देयर नेवी ट्रेनिंग, वन सेमे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड. सो दे इवेंचुअली बिकम सीनियर टू अस इन दी अकेडमी, दो हमसे जूनियर होते हैं रैंक में भी, बट अकेडमी में हमसे सीनियर हो जाते हैं, यू नो. एक 6 महीना दे आर सीनियर, देन द नेक्स्ट 6 months वी बिकेम सीनियर. सो पहला 6 महीने में बहुत सताते हैं, एंड देन सडन वो भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक जूनियर वाला बंदा जो हमसे उम्र में छोटा है, ही इज टेकिंग चार्ज ऑफ यू, यू नो, एंड ही इज ऑल दोज थिंग्स, लॉट ऑफ ईगो इश्यूज. सो टू ब्रेक यूर ईगो, टू ब्रेक, टू गेट यू ग्राउंडेड, दैट इज द एंटायर आइडिया, एंटायर फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. फिर यू नो, लॉट ऑफ स्टोरीज देयर, लॉट ऑफ पनिशमेंट, हर चीज के लिए पनिशमेंट, एंड धीरे 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 करके पासिंग आउट परेड के. सो नाउ पासिंग आउट परेड इज वन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ एनी ऑफिसर्स लाइफ, बिकॉज यू नो, नो बडी कैन बाई दैट मोमेंट. यू नो, आज जैसे IPL का ऑक्शन चल रहा है, पीपल आर बाइंग एट 12 करोड़, 13 करोड़, यू कैन बाई अ सचिन तेंदुलकर फॉर एन IPL, बट यू कैनॉट बाई दिस मोमेंट ऑफ पासिंग आउट परेड. यू नो, इट इज सैक्रेड, इट इज अर्नड. सो वेन यू पास आउट, वेन यू पास आउट दैट डे, देर इज अ ग्रैंड परेड मॉर्निंग में, एंड जो पासिंग आउट वाले कैडेट्स होते हैं दे लाइन अप, एंड इन दी धीरे चाल जैसी ब्यूगल बजती है धीरे चाल, एंड देर इज अ सॉन्ग प्लेड ऑल लाइन सैंग का, एंड यू क्रॉस द डेक अंतिम पग, एंड दी फ्लावर पेटल्स आर शवर्ड ऑन यू थ्रू दी हेलीकॉप्टर्स एंड डॉनियर्स जो ऊपर से जाते हैं. इट्स अ वेरी गोल्डन मोमेंट, इट्स इट्स वेरी रेयर यू गेट दैट एक्सपीरियंस. एंड देन वंस यू पास आउट अंतिम पग, आप फिर वहां खड़े रहते हो एक पर्टिकुलर जगह पे, एंड योर पेरेंट्स स्टैंड बिहाइंड यू, मदर ऑन द लेफ्ट एंड फादर ऑन द राइट. देन दिस ट्राइब शिपिंग सेरेमनी हैपन, इट्स कॉल्ड शिपिंग सेरेमनी नेवी में, आर्मी में इट्स कॉल्ड पाइपिंग सेरेमनी, वी कॉल इट शिपिंग, ट्राइब शिपिंग. तो स्ट्राइब के ऊपर एक सफेद कपड़ा होता है, दे रिमूव दैट व्हाइट क्लोथ एक ब्यूगल बजने पे, एंड द मोमेंट दैट गोल्डन एपुलेट कम, you are presented to the nation, you know, as an officer, as a sub-lieutenant. So that is the entire step, the process. And then you take a oath to, बोलते हैं ना, मार मिटने की कसम खाते हैं. मर मिटना नहीं बोलते हैं, मार मिटने की कसम खाते हैं. मरना इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, एंड इवेंचुअली इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ यू किलिंग, यू नो. सो अगर हो गया वॉर में, या दैट्स अ फैक्ट, एंड नोबडी फियर्स दैट. एज अ सोल्जर आई हैव नेवर फियर डेथ, even when I was part of that two of the operations, because somehow wo nikal jata hai, wo academy se leke. But yes, सो दिस वॉज द एकेडमी फेज. एकेडमी फेज से फिर सब लेफ्टिनेंट होके उसके बाद वी गो फॉर आर यंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग. वायो कोर्स बोलते हैं आर्मी में, तो नेवी में इट इज कॉल्ड सब कोर्सेस. सो ऑल ऑफ अस गो फॉर आर सब कोर्सेस. इट इज अटैचमेंट टू वेरियस यूनिट्स फॉर 10 10 डेज. जैसे लॉजिस्टिकल यूनिट है, अगर मैं इंजीनियर हूँ इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मुझे मैकेनिकल वालों के साथ 10 दिन अटैच करेगा टू लर्न अबाउट देम. सो इट इज अ हैप्पी पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज एकेडमी से रगड़ के बाहर निकले. सो वी हैव आवर टाइम, वी आर यंग, सब लेफ्टिनेंट होते हैं. बाइक तभी नई नई बाइक आती है सबके पास. And you are at 23 wearing white uniform, you know that girls get attracted to you, the civilian girls. So you are in that euphoric form of your youth, right? So wo sare hamare sath bhi ho rahe the. But chalte chalte tabhi tha Kargil war 1999. And suddenly all the courses were stopped. And then
you were in INS Kripan, right? At that time.
Yeah. So that's a story. So ये वायो कोर्स में तभी हम आईएनएस शिवाजी में थे. एंड वहीं पे कोर्स सब टर्मिनेट करके वी वे सेंड ऑन शिप्स. ऐसे शिप अटैचमेंट हमारा ड्यू था, दे प्रीपोंडेड इट, बोला कि गो एंड सी द वॉर. नथिंग लाइक हम लोग कोई तोप तलवार थे इसीलिए नहीं लेके गए थे, बट दे वांटेड अस टू गिव दैट एक्सपीरियंस, यू नो, फॉर वॉट एवर रीजन. सो वी वेंट ऑन टू शिप. सो आई रिपोर्टेड टू अ शिप कॉल्ड आईएनएस किरपान, P-44 पेनेंट नंबर. और फर्स्ट डे जब रिपोर्ट किया तो फर्स्ट टाइम आई एम रिपोर्टिंग टू अ शिप, तो सब कुछ नया नया लगा. एंड इतना छोटा सा जहाज, देन 200 पीपल स्टेइंग, एंड दैट इज द टाइम द रियलिटी स्टक. ओके, ऐसे भी होता है टाइप्स, यू नो. एंड देन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टू स्टे, एंड ऑफिसर्स 12 थे उस पे, और बंक नहीं थे सोने के लिए बिकॉज आई वॉज द एक्स्ट्रा गाय देयर, यू नो. सो दे ऑलवेयर सिंस वी वर गोइंग फॉर वॉर, everyone was in that mood, कोई comfort mood में नहीं था. So we were given a particular place to sleep, me and one more एक midshipman था who was doing his training. So both of us used to sleep in a missile compartment, pre-launch compartment बोलते, PLCP, हम वहाँ सोते थे. And tough life because seasickness बहुत थी because ship used to roll pitch, तो vomit इतना था कि एक दिन finally खून की उल्टी हो गई. and then that is when I reported that to my senior, he was so happy, he said okay welcome to the sea, you know this is a tradition, मुंह से खून आता है तो probably sea accepted you, so all those things goes on. next day morning the captain called me, so there is a tradition in navy to have breakfast with CEO, any officer joining the unit, and I being the junior most, so I had a breakfast with CEO. And in that, I came to know that we are going for war. That is the time he disclosed, son, either you are going to make history or you will be an history. So either way, the history will be created. So first time. So when you hear all this, pehla emotion is fear. You know, jab bolte ho, aapko suddenly 22 saal pe, pehla bahut thought aata hai ki yaar, abhi to hum soch rahe the ki hamare parents ki zindagi ya bhaiyo ki zindagi sab track pe aane wali hai. And then suddenly आप बोल रहे हो वॉर पे जाओ और कुछ हो गया तो क्या होगा, you know?
Yeah.
You never know, you are not part of that. तो फिर तुम्हारी डेथ के बाद क्या होगा तुमको पता भी नहीं चलता है.
Right.
So all those fear comes, emotions goes through, and yes, I went through that emotion, and you know that's how we were off Karachi for 35 days, 35 to 40 days, and they were navy के 33 ships थे. We called it as Operation Talwar. We were, you know, we could see the Karachi port lights and we were waiting for orders to attack Karachi, you know. So, but however, Pakistan got the, uski bolti hai na, unko pata chala ki aise sab hai, and they knew it is a disaster for them. If Indian Navy strikes, they are going to change the shape of their map again, bahut sare factors. And then by that time, Kargil, we had a very strong upper hand. And probably Pakistan, after talking to their allied partners, after talking to UN and all, they decided that for ceasefire and end of war. So they offered ceasefire and defeat.
A question here. Like, आपने mention किया कि you could see the Karachi वाला port. And I want to know कि जो naval wars होते हैं वो किस तरह से लड़े जाते हैं, because military के ऊपर movies बनती है तो we know कि वहाँ पे it's like you can see कि वो action क्या है, but navy में वो क्या scenario रहता है?
So navy में दो तीन scenario, so you have to understand the war is fought on water, the international waters, और ये है. अनलाइक आर्मी और एयरफोर्स, वेयर आर्मी वन टू वन कॉम्बैट होता है, या यू नो यू आर वेरी क्लोज, एयरफोर्स है तो ऊपर से जाएंगे मारेंगे, बॉम्ब ड्रॉप करेंगे. फॉर नेवी इट बिकम्स बिट चैलेंजिंग, यू आर वॉर इज फॉट ऑन वाटर एंड यू हैव टू प्लान इन सच अ वे कि आप सिर्फ मिसाइल्स और गन ही यूज कर सकते हो. हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड ऑल इज वेरी रेयर. ओनली ये है कि वी हैव आवर मरीन कमांडोज हुम वी एक पर्टिकुलर पोर्ट के पास पहुंचने से जर्मनी लेके छोड़ देंगे, दैट इज वन ऑप्शन. अदर ऑप्शन इज आर सबमरीन्स एंड टॉर्पेडोज. सबमरीन्स जो टॉर्पेडो अंडर वाटर मिसाइल्स मारती है, सो दैट इज द थिंग. सो इट इज शिप टू शिप वॉर, एंड रेंज में आने के बाद वी कैन यू नो फ्लाई मिसाइल्स ऑन देम, वी कैन प्रोजेक्ट मिसाइल्स ऑन देम, दैट दैट पर्टिकुलर, जैसे 71 में कराची पोर्ट पे डाला था. सो दैट इज द ओनली वे, देर इज नो वन टू वन कॉम्बैट. सो नेवी में कहते हैं ना कि साथ मारते और साथ मरते. इफ एनी टॉर्पेडो हिट्स आर शिप, व्हेन द शिप सिंक्स एवरीवन गो डाउन. दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1971 फॉर आईएनएस कुकरी, करेक्ट? सो दिस इज हाउ द नेवल वॉर्स आर फॉट. नेवल वॉर्स आर फॉट, इट इज मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक रादर देन द पावर. यू कैनॉट शो हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड ऑल, विच इज वेरी वेरी रेयर, विच इज वेरी वेरी रेयर. सो दिस इज हाउ. So I was there for 35 to 40 days. It was a great experience of seeing the action station. And you never know, all of us were waiting, when do we get the order to attack? So we were the first of the four ships who were lined to attack the Karachi harbor. And yes, so it was always a very tense movement, up and down movement. Abhi hoga, abhi hoga, abhi marenge, abhi marenge, abhi jayenge.
And like,
So lot of emotions.
what was the conversation that was happening on the ship उस time पे? Because like I was recording these two podcasts, one was with Captain Yashika Hatwal Tyagi, and other one was with Captain Navin Nagappa sir. So I had a very interesting conversation with them where they said me कि उस time पे जो जो वॉर बेसिकली हमने जीता, वो हमने जीता हमारे जो एकदम न्यूली फॉर्म्ड ऑफिसर्स थे, लाइक जो जवान थे, जेसीओज एंड यंग जो कैप्टन्स थे, एंड दे मेड अस विन दैट वॉर. तो नेवी में क्या फिर मतलब कॉन्वर्सेशंस क्या थे?
सो नेवी में भी सेम, यू नो वहाँ आर्मी वगैरह में कैसे है, एयरफोर्स में कैसे है कि यू नो द यूथ, द मोमेंट इट्स पावर, इट्स इंटेलिजेंस एंड दिस थिंग, यू आर, सो देयर आर पीपल हु प्लान्स एंड देयर आर पीपल हु एग्जीक्यूट. तो आर्मी में ऑल दिस यंग ऑफिसर्स हु वर फ्रॉम माय बैच ओनली, सौरभ वाज माय बैच में, बैच इक्विवेलेंट, एंड
सौरभ कालिया,
सौरभ, हां सौरभ कालिया वाज माय बैच इक्विवेलेंट. देन विक्रम बत्रा सर वाज क्लोज टू 8 months टू 6 to 1 year वाला सीनियरिटी में. नवीन नागप्पा वाज माय सीनियर, 6 months सीनियर, 4 to 6 months सीनियर. सो ऑल ऑफ अस वेयर इन दैट सेम ब्रैकेट ऑफ 21 22 23 इयर्स ओल्ड, राइट? नेवी में कैसे होता है ना, नेवी में जब जहाज चलाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज देयर इज नथिंग यू कैन डू With your hand, you are there in full josh. तो आपका missiles मारते हैं, but you have to support the, since I'm an engineer, I have to support the technical requirements, right? So वो technical requirements में ये थे. And yes, young officers, young lot होने से काफी josh में रहते हैं, because you don't carry much burden on you, because जैसे जैसे senior होता है तो family, बच्चे, बीवी, माँ बाप, अपने को उतना तक नहीं रहता. So you are in josh. So we were all in josh. पूरा action station देखे. So many exercise in ship which happens during the war, andhere mein chalna and identifying your place of when if something goes wrong, there are rescue stations, there are action stations on ship. Aapko ship pe kahan aake khada rehna hai, agar ek torpedo lag gayi to what are you supposed to do, if you have to jump in water, how are you supposed to lower the life raft and jump. Bahut sare exercise hoti thi. And yes, it was a great experience, and we thought like आज रात को सोचे थे कि कल सुबह मार देंगे करके. एवरी नाइट वी यूज टू थिंक कि टुमारो वी विल गेट द ऑर्डर एंड टुमारो वी मे अटैक कराची टाइप्स, नो. बट देन बाय दैट टाइम पाकिस्तान रियलाइज्ड इट विल बी टफ, एंड दैट्स हाउ दे वेंट फॉर अ सीज फायर देयर. एंड वी केम टू नो दैट पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड अ सीज फायर एंड प्रोबेबल डिफीट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड द वॉर एंडेड ऑन दिस थिंग. सो By virtue of we being there in the front line, in the war zone, so all of us were decorated with the Vijay Star Medal, both Operation Talwar, you know. So Navy calls it Operation Talwar. Army calls it Operation Vijay. Vijay, Operation Vijay is the overall, you know, the umbrella
term.
हाँ, और फिर Army Operation Vijay बोलते हैं, हम उसको Operation Talwar, Air Force उसको Operation Safed Sagar बोलते हैं. So this is how The entire Kargil war was fought on a three dimension, you know. by virtue of army being there in the Kargil, Dras, Batalik, Uri and Siachen and all those sectors, it was more of a army war, you know. Mm. But then Navy and Air Force played a very tremendous and significant role.
Right.
And yes, our political leaders also, whoever took the decisions, Atal Bihari Vajpayee ji and this team, and commendable, you know, whatever happened. So Pakistan started that war with Saurabh being captured and killed, tortured. But we ended that war with our final bullet, you know.
And that too at a moment where India was under a lot of sanctions, because we had a nuclear test just kiya tha.
Correct, correct. Or India, ke, irrespective of that, we were very strong. We pronounced to the world what we are doing. Hmm. Nothing was kept under the umbrella the way Pakistan did. So it was a breach of trust by Pakistan when we were, you know, hovering for friendship and Lahore bus and all right. those things were going on. And at the same time, Parvez Musharraf was building up this particular thing. So ye thi kahani wahan war tak ki. So that's how I'm a war veteran. And later, yes, in my service, when I was growing up in service, I went on to do my missiles and weapons course. And I was posted in a commando base. Commando and a weapon and missile base. They were together right. those days. So I grew up with special forces. A lot of my seniors, juniors are from the special forces, Marcos. And I trained, I used to play with them. I opted for special forces, but Navy didn't allow me because being the short service technical guy, right. that time they didn't have scheme for short service technical guy to join the special forces. Hmm. And but yes, 2 years plus I was with the special forces, with close to their vicinity, lot of friends, lot of senior.
So and, what was that life like? Because like maine, I think so. You know, Sushant sir, right?
Yeah, yeah.
Sushant he sir. Was in special forces. So maine unke saath mein interview kara. So I know ki armed forces mein what is the special forces life, but Navy mein kya hota hai? Like and you have lived with them. So what is their mindset like?
The, again, you know, the mindset for all these special forces guys, whether it's Garud or you know para SF ya Marcos hai ya koi bhi Cobra hai ya jo bhi log BSF ke right. ya jahan the CRPF ke bhi jo commando so mindset inka bahut alag hi hota hai. Not everyone can become because that is what they test during your training. They screw your life when you go into the hell week and all. You are never able to sleep for 72 hours types, you know.
Right.
they break you down and when you overcome all those things, you are a different individual then. You know, your mindset is, nobody shows off there. Baki mein kaise hota hai? Lot of youngsters have this thing, ki main special forces mein jaunga, the day I say I'm from special forces, toh meri alag se ek izzat hogi, fame, name. But ye log aise nahi hota. Once they undergo that training, they become more subtle. They don't want to announce to world that I am from the special forces.
Yeah.
So very, very, very strong, rigid guys, very pure at heart. And they are always ready to do anything for right. the sake of, you know, the duty, what we call. And yes, extremely fit guys, extremely super, super fit guys, you know. You won't see any flunky types there. It is all about physical and mental toughness. So I was with them. I used to run with them. I used to do drill with them. I used to play with them. And I had various other chances which normal officers cannot do, which special officers can do, special forces guys can do, which I had the privilege of being with them. So, you know, this was the beautiful experience.
Correct.
Then the Parakram happened, Ops Parakram,
Operation
2001 to Kyaspas. Again, a full-fledged war was going to happen with Pakistan. And this time I was in a senior role, 2 saal ho chuke the. So I was in a missile base, Marcos base. So our role was to support and, you know, to enhance the fleet with the missiles, the surface-to-surface, surface-to-air missiles, wagera, jo bhi hai. So we were the custodians of those missiles. And then we saw that very close to, you know, how the turnover happens. And we were to go for war again. But then again, the ceasefire was called much before a bullet was fired. Anything was done as a war. So this was Operation Parakram. So whoever took part in the mobilization and demobilization, they were all, you know, finally decorated with the Operation Parakram medal. That's how I got the Operation Parakram medal. And yes, subsequently, then I came back to a ship. I was in INS Virat for close to 2 months, and then INS Jyoti and INS Kirpan. These three ships
right.
I served. And then I came to Naval Dockyard, Bombay. Was my last tenure, and I did technically very well there. I got my all my awards there. And during that time, I had worked in all the ships and submarines of Navy, being in the dockyard.
Mm.
I had the privilege of knowing the entire fleet. More or less, har jagah pe hamara kaam hota tha, so you get to interact with this, you get
right.
to travel, you get to sail with them. So yes, whole lot of rich abundance experience. And this was my naval innings, you know, the phase three rather. Phase
right.
two was my academy time and phase three was my naval life. Phase four was, yes, very tough decision to leave Navy because I was doing really well in the Navy. And, you know, I never wanted to leave Navy. I was given permanent commission. Today, my batchmates are going to become Commodores, Brigadier
wow.
equivalent. And I was in that race. You know, if 3 or 4 could have made, I would have definitely been in it. But then, kismat ko kuch aur hi manzoor tha because, see, earlier days kaise na, ek pati agar kahin jata to patni piche piche bhagti thi. Hamare time aise nahi hai. It's all about equality and you know, with your partner. So me and my wife, she's a professional, working professional. So we discussed a lot ki if I continue, then thereafter would be transfers and this thing at the senior ranks. Do saal, ek saal mein. So her job won't be stable, you know. Her career may have to be sacrificed. So we had two options. So she was always willing that she will be sacrificing her career. But I never wanted that to happen because itne padhe likhe MBA sab karke. So we decided. So that's when I was posted in Bombay, my last posting. I decided to hang the uniform with great pain and with a lot of thing on my heart because you are going into a region of uncertainty. Aapke paas yahan 1 lakh rupaye aa raha hai, salary aa raha hai, thaat baat, ijjat sab hai. Suddenly you don't have a job in hand and you are moving out with all minuses, you know. कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई सलूट नहीं मारेगा, वो सब नोबडी बॉदर्स इन सिविल. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी एंड वेरी सून आई एडजस्टेड टू इट बिकॉज आई वाज माय लास्ट पोस्टिंग वाज विद द नेवल डॉकयार्ड वेयर आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद सिविलियंस अलॉट नियर डॉकयार्ड सिविलियंस एंड ऑल. सो प्रोबेबली दैट कुशन्ड मी टू गेट बैक इनटू द सिविल वर्ल्ड अगेन. एंड आई डिड माय एमबीए फ्रॉम नरसिम्हाजी नेवी गेव मी एन एमबीए release MBA, that is defense MBA from Narasimhanji. Previously, I had done my full part-time 3 years MBA from Jamnalal Bajaj. So I had all the ammunitions with me in terms of qualification. And then I was campus selected by one of the companies to join them as their project head and that position. So I was there for good 1 year close to before my current job happened. It was like under ministry. Of shipping, there are body called independent body called you know Indian Register of Shipping, which is Section 25 company. So I joined there as in a role, and touch wood, 13 years I'm continuing there with a various this thing. So this was my third phase of life, and in this fourth phase. In this phase, when I was leaving Navy, I realized that I'm hypothyroid. And my weight shot from 80 to 107 when I was leaving Navy. It was very scary because when you look at your own self, you get used to get scared after seeing you. So I realized there is something tremendously wrong. It is not because of lifestyle or a lot of eating or things like that. It is purely because there is something wrong which is happening, right? And that happened. So the only option was to go back to the Fauji way, to go back to running, cycling, swimming, whatever endurance sports you picked up. So I picked up running as a passion. Fauj mein to jabardasti karate the. Abhi main khud se it took as a passion. And I started running. Pehle 1 kilometer, 2 kilometer. That gradually become 5 kilometer. You started seeing change on you. You know, dawa ke saath saath, thyroxine pill ke saath saath, your body weight started changing, you know, dimensions. So, kaha 107 se 105 aa gaya, 105 se 100 aa gaya, 100 se 90s mein, 90s se 80, late 80s. So now I fluctuate between 84 and 87. So a whole lot of 23 kgs plus lost. So in that bargain, I became a marathoner. I run marathons across India and world. I've ran in close to 14 countries.
And this includes ultra marathons as well.
Yeah. So ultra marathons are anything above 42 kilometers.
Yeah. You
know? So 42 kilometers is full marathon. So I have done 112 half marathons. I've done 26, 28 full marathons and some close to 10 ultra marathons, you know, including Comrades, which is world's toughest 89 kilometers run in South Africa. So I'm one of the finishers of Comrades in 2019. Wow. So this goes my phase, you know, part of phase four again. Phase four has been very dynamic because that's when I started, you know, I love writing, you know, reading, I read a lot, and writing is a release for me. I write a lot whenever I'm happy, whenever I'm sad. So writing is my release. So my strong point is humor. So I won an award recently for the best author at the All India level for my book Bhag, which is a humorous book, or humorous take on running as a whole. So I won an award for that. So my strong point is, you know, reading and writing both. And that's how I always push everyone to develop this habit. So if you have to be a good writer, you have to be a good reader.
Absolutely.
Be a good reader, spending time, vocabularies, and you will learn. Trust me, you will learn, because my English was so poor in my school days. And today I'm the author of my seventh book, is about to release on Monday, day after tomorrow, my seventh anthology. Okay. It would be anthology. So yes, life has over the years given a lot of things, you know, lot of learnings, lot of things. So absolutely no regret. And now I'm in my phase five of life after 45. And a lot of things, a lot of plans in this phase also. A lot of adventure, bodybuilding and swimming and triathlons and, you know, again,
plus you are doing your own podcast as well for the army.
Podcast, just to ensure that, you know, youngsters are aware of things so that they are in loop. Once upon a time, nobody was there for us in terms of, you know, now thanks to the social media and the internet, at least people can connect to people from anywhere across the globe. So that's the beauty of this social media. It has got its own perils, but yes, we always think about positives. So the positives are that, and that's why I thought I shouldn't be, you know, aisa nahi hona ho jana chahiye ki opportunity miss ho kisi ko help karne ka. And from 2020, I'm there on Instagram, pretty active, helping out the youngsters. Yeah. A lot of podcasts I have done myself. I have given a lot of interviews of mine to various other channels and Instagram handles and things like that.
And like, I have two, three questions for you. One is very philosophical level, because jab maine Sushant sir ke saath baat kiya tha, toh we recorded like three episodes with him. First was totally about special forces. One was about his Shaolin training in China. And the third one was about his cycling. Now, usme problem ye hua ki humko baat karni thi about his cycling, but because he comes from an army background, he had so much insight into a lot of things, matlab philosophy hai, and you have seen death so closely. You have seen your brothers in arms, you know, dying in front of you. So you basically understand life very well. I want to know from you, and now since that you have interviewed so many people from Forge, you have given your life to the country. I want to know, why do people join the armed forces? Like, ek ye reason mujhe pata hai ki, one, it is the uniform, other one is the love for nation, but kahin na kahin kuch aur bhi reason hota hoga na, because kahan se aata hai ye ki you want to join in, you want to give your life for the nation.
Okay. So, other than the passion of serving your nation, uniform, ek wo junoon hota hai sab mein. Whoever want to join the armed forces. Na. See, if it was all about money, I'm sure nobody would have joined the armed forces. Because, you know, I'm outrightly saying that we don't have much money. And I always tell, if any youngsters ask me, ki, sir, paise kitna milta hai, I always tell them, ki, don't join. Simple. The moment you think about money, it's not the right place to be, frankly.
Yeah.
Because तेरा जो कैश इन हैंड आएगा मंथ एंड में, यू वुड बी सरप्राइज. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. सो एनीवन हु जॉइन स्पेशली, यस, इफ यू आर टेकिंग इन द ऑफिसर कैडर, इट्स प्योरली बाय यू नो दैट थिंग ऑफ डूइंग समथिंग. यू नो, वन इज यस नेशन बिल्डिंग ऑफ कोर्स बीइंग अ नेशनलिस्ट. सेकेंड थिंग इज टू एक्सप्लोर यूर सेल्फ. वन इज यू नो एज अ नेशन यू आर गोइंग, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. Second would be a very selfish thing of exploring yourself. Every guy or a lady want to explore themselves. कि मैं कितने हद तक जा सकता हूँ? How much can I be stretched? मेरा limit क्या है करके? And
right.
then when you join the armed forces, the world is yours. You know, so how you want to explore yourself is what has to be done, and nobody can stop you there. Like Sushant. Cycling around the world, and he's from the armed forces mindset.
He is in Africa right now cycling.
Yeah, right now he's in Zanzibar. So
yeah,
all of us have seen death so closer, or at some point of time we were told ki you never know whether you will come back or not. You know, so when you see that, when your fear of death goes away, then comes the opportunity of exploring this beautiful life. You know.
You live more.
मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार जिंदगी ना एक ही बार मिलती है और एक ही बार ही मिलेगी. इफ यू आर स्पिरिचुअल यू नो दैट, बोलते हैं ना कि 7 जन्म के बाद यू अगेन बिकम अ इंसान. तो अगले जन्म में यू नेवर नो, अगर कुत्ता बिल्ली बनकर पैदा हुए तो आपका नसीब है, अगर आप कीड़े मकोड़े बनकर पैदा हुए तो जस्ट टू बैड. सो इफ यू हैव वन लाइफ एंड इफ यू डोंट लव यूर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी इन ऑल माई टॉक यू विल हियर दिस, इफ यू डोंट लव यूर सेल्फ, नोबडी इज गोइंग टू give you a fucking damn about your life, right?
Yeah.
So you have to love yourself. That is the underline. And when you love yourself, you will love others. You will start exploring. And there is a very thin line of getting over obsessed with you. You shouldn't get over obsessed with you, but you should love yourself, right? So ये जो army वगैरह में लोग आते हैं, army navy air force, इनका सबका यही जुनून है. I have seen my coursemates, my juniors, my seniors, you know. एक्सीडेंट हो जाते हैं, ये होता है, बट दे आर राइट अप स्टैंडिंग इन अनदर फ्यू मंथ्स, यू नो, एंड वो जुनून कैरीज देम इवन आफ्टर दे लीव सर्विस. लाइक ऑल ऑफ अस हैव लेफ्ट सर्विस नाउ, स्टिल वी हैव दैट इंस्टिंक्ट. और आज भी हमें उतना ही है दैट टुमारो इफ नीड हैपेंस दैट वी आर कॉल्ड फॉर अ वॉर, वी आर ऑलवेज रेडी. यू नो, वी आर द इंक्लूडिंग द वेटरन्स हु आर सुपर वेटरन्स, जिसको बोलते हैं ना, जो 70s और 80s में, दे आर ऑल्सो रेडी टू ले डाउन देयर लाइफ. सो प्रोबेबली ये जुनून बांध के रखता है. And money है तो फिर शायद ही, you know, money is not at all a motivator, not at all.
Yeah.
But yes, we have decent money. ऐसा नहीं कि we can't splurge, but at the same time we can live a very decent life. You know, very
content
well-balanced life. Content and well-balanced life.
Yeah.
And the charm for that uniform. You know, lot of us want to wear that uniform, want to feel the way the uniform adores us, right? So that's how.
And you know, like I have read a lot of books these days about spirituality, and I have been hearing a lot of army podcasts, because ab mera on this podcast I want to do a lot more fauji wale podcast, like fauji talks jaise aap karte hai, because I have understood ki mera inclination hai us taraf. I want to know the stories. And one thing which I don't know if this is true or not, but every book, every army podcast, somewhere in the, you know, broad aspect talks about this one thing, one emotion that at the end of the day matters, that is love. As you also said, ki if you love yourself, if you love others, then only either you can prevail or the country can prevail. So do you somewhere feel that the boiling point of everything, jo aapke life hai, jo aapne abhi tak interview kiya hai, when you have to boil it down to one point, the one emotion which you can take out of it is love?
Yeah, definitely. You know, love is one of the finest emotions, you know. So see, as I said, the first emotion is fear more than love. But then fear, you can always, you know, traverse over fear. Fear ko aap capture kar sakte ho. Love is such a beautiful emotion, you know, and that love can be summarized or it can be expanded or whatever you say. So end of the day, it is either love for nation, either love for your coursemates, your batchmates, your people, your men, your material, your methods, or whatever you say. So the very governing factor which comes is love, you know. कोई स्पेशल फोर्सेस वाले को पूछो कि तू बार बार ये करके और तू अगर मर भी जाता है तो वो यही बोलेगा कि अगले जन्म में मैं फिर से स्पेशल फोर्सेस वाला बनूंगा. ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, यू नो. एंड आई हैव नेवर रेयरली कम अक्रॉस समवन हु हैड रेग्रेटेड कि मैं फौज ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, आई वुड हैव बीन अ बेटर इंडिविजुअल. आई हैड कम अक्रॉस वन और कपल ऑफ गाइज, आई वोंट लाई दैट आई हैव नॉट कम अक्रॉस, बट 99% दे डोंट हैव एनी रिग्रेट, दे हैव स्टिल दैट लव फॉर यूनिफॉर्म, लव फॉर नेशन, लव फॉर बींग इन सच अ यू नो ह्यूज इंस्टीट्यूशन ऑफ सच अ रेवर्डनेस. सो दैट इज सो आई टोटली अग्री विथ यू ऑन द फैक्टर दैट लव इज वन ऑफ द टेकअवेज, राइट?
Yeah. And I think so this is a good note to end this podcast on. But before we go, I am sure ki matlab jo aapki audience hai unko bhi ye sunna hoga and meri audience hai, they will also want to know from you. Ye, and this is one question which we ask to all our guests, which is ki what are your recommendations? So we'll take from you like 3 book recommendations and 2 film recommendations. So 3 aise book jo aapke according sabko padhni hi padhni chahiye.
Okay. So couple of books on the armed forces. I think every individual of this country should read, you know, the way we read our textbooks and other things. One of them is, you know, India's Most Fearless, Part 1 and Part 2.
Yeah.
That's one of the most comprehensive book by Shiv and Rahul. So Part 1, Part 2, every individual, because probably once I read those books in lockdown, that is how I started podcast and storytelling about the armed forces. I wanted more and more people to know. And Shiv and Rahul, they are not from the armed forces background, but they have done extensive research. And that's how that beauty has been, you know, there for everyone to see. So that is 2 books I would recommend. And there is one out of, not from the armed forces genre, but this is genre, is a book called When Breath Becomes Air. It's
by Paul Kalanithi.
So that is one book which I cannot, that made me cry, that made me ponder over life, that made me, every time I come back to that book, it is there in my showcase and the bookcase. Every time it hits me, whenever I go back to that book, it hits me hard, you know. And that's a beautiful book about life, wherein he's a doctor who's treating cancer patient. And after some years, he's being the patient there in the same hospital home he had treated so many people. So it's a very beautiful journey. And the final epilogue has been written by his wife, the final chapter. And that's the entire summary and beauty of that, you know, beautiful book. So yes, these are the 3 books I would recommend. And movies, yes, I'm not a great movie buff, but... you know, few of the movies of this generation I would recommend you to watch is, one of the movies is, of course, the Uri and the Sher Shah.
Yeah.
Uri and Sher Shah, definitely. The younger lot should watch this movie. And the movie which motivated me to join the armed forces was, of course, one of the movies was Border. Border, you get that goosebumps, you know, irrespective, because you have never seen that war, but they had J.P. Dutta had done fantastic job to depict that. And I had got the privilege of meeting J.P. Dutta sir on the sets of Refugee. So we were at border, if you, on my Insta profile, you will see a lot of pictures.
Yeah.
So we were attached with BSF and that was the time when Refugee shooting was going on. So J.P. Dutta sir had invited us for dinner with the crew. So that's how we met Karishma, Karina, Abhishek and you know, Jackie Shroff and all those. We had dinner together. So that all war movies, you know, watch those war movies and some movies which has got deep meaning. So I would prefer you watch a lot of Malayalam movies. They have got some good stuff to watch.
Yeah.
Some good stories and good stuff to watch. Some lighthearted stories are there, and father-son relation and so many things you can learn. So so these are the things I would recommend.
Perfect. And before we log off from this podcast, since we were talking about that love wala segment, that at the end of your life, at the end of everything, it boils down to love. So there are 2 books which I think so you will absolutely love. So one is The 40 Rules of Love by Elif Shafak. And matlab wo naam se lagta hai ki it might be a love story, but it is not a love story. It is a very deep spiritual book. And the other one is Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. So two of the like very wonderful book. If you read those books, aisa lagta hai ki you go into that universe and you are, you know, rotating around somewhere in that universe. So I'm sure you'll love that.
Yeah. And I would recommend that, you know, Bhagavad Gita is one of the beautiful books. Every time I read Bhagavad Gita or whenever I have a Bhagavad Gita, which is kept on my permanently on my study table.
Right.
So whenever I get time and whenever I feel lost, I go back and refer Bhagavad Gita. Trust me, every time I read, I get into a different zone. Sometimes I fear about myself going into different zone, you know, because sometimes it's so hard to think from that perspective. It is such a wonderful and beautiful book. It is a book about life, you know. If you read Bhagavad Gita, many, many authors have drawn inspiration across the world. Many authors have drawn inspiration and they have termed it as one of the most beautiful books, you know, irrespective of anything. So I would recommend all of you to have Bhagavad Gita as a personal collection with you and as a book, not more as a book, but more for your life. So that
a
is
guide
my
to
strong
life.
Recommendation, a guide to life.
Yeah. So in fact, I was reading Bhagavad Gita. Like I have read it once before, like last year I read it. I read like jahan se mera aisa, like man karta ki, I want to better understand this point. So I open that chapter and I start reading. So I was reading it yesterday and I made a tweet after reading that. It was again, same love ke upar. So I got to understand something that when you are in love, so what is true love is when you feel all the emotions ek saath, like you want to cry, you want to smile, you want to laugh, you want to shout your heart out, you want to run. So it is that wild wala feeling which encapsulates everything, right? And there's a point in Gita where Lord Krishna shows his Vishwaroop to Arjuna, and I think what Arjuna at that time feels is that true love. He cannot encapsulate his emotions, and that is what love is.
Correct. Absolutely.
So with that being said, sir, this has been such a good conversation. And jaisa main har army podcast ke end mein bolta hu that this was not enough. I have to record few more podcasts with you kyunki I enjoy talking with people from the forge. And it's an absolute pleasure, sir, to have you here. And it's an absolute honor for me. So thank you so much, sir, for coming on the show.
Yeah, thank you so much. And it was a pleasure talking to you. And sorry to keep you waiting for half an hour.
Not an issue, sir.
Something which is not in our hands cannot be helped out.
Not an issue, sir. Not an issue.
That was one thing. Otherwise, yes, enjoyed the talk and well-driven questions and well-pondered points.
Thank you so much.
Thank you so much.
Thank you, sir.